ओम शांति। अव्यक्त मुरली अति गुह्य अनेक रहस्य समाये हुए। मैं दो तीन प्रश्न आपके सामने रख देता हूं, चिंतन करें फिर चर्चा करेंगे। अष्ट रत्नों का मुख्य आधार क्या है? ब्रह्मा बाबा नंबर वन में गए, उसका मुख्य आधार क्या है? और सेवाओं में सफलता का भी वही आधार है। प्रकृति सफलता की माला पहनाएगी, उसका भी वही आधार है। विजय के नगाड़े बजेंगे और आधार है मैं और मेरेपन का त्याग। मैंपन और मेरेपन का त्याग करना ही संपन्न और संपूर्ण बनना है। कितनी बड़ी बात कही। हम इस धारणा पर विशेष ध्यान देंगे। ऐसा न हो कि जितना हम आगे बढ़ें, जितना हमारी सेवाएं आगे बढ़ें, सेवाओं में सफलता मिले, हमारा मान बढ़े या लौकिक में समाज में हमारा मान बढ़े और मैंपन बढ़ता चले। बहुत गहराई से आज इस पे चिंतन करना है। पॉइंट तो दूसरी भी थी, मैं जस्ट रिपीट कर देता हूं। वो तो प्योरिटी की पर्सनालिटी, और प्योरिटी ही सबसे बड़ी पब्लिसिटी का आधार। और बहुत सुंदर चिंतनीय बात, जो चीज एक बार छोड़ दी उस पर अपना अधिकार नहीं रहता। वरदान भी जीवन में प्रैक्टिस में लाने का है और बहुत बड़ी चीज है। फरिश्ते स्वरूप में रहो तो बाप दादा छत्र छाया बनकर साथ रहेंगे। सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जीवन में विघ्न और समस्याएं आ जाएं तो बाबा छत्र छाया बन जाएगा। ये गुह्य चर्चाएं जिस पर सभी को बहुत चिंतन करके इन्हें जीवन में समाना है। मैंपन और मेरापन व्यर्थ संकल्पों को जन्म देता है। इन्हीं दिनों की मुरली में था, जबकि ये मुरली है, याद होगा अप्रैल 78 की। बाबा ने कहा 10 मिनट अगर तुम याद में बैठो और चेक करो कि संकल्प कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, तो पता चलेगा संकल्पों के भागने का कारण है मैं और मेरा। कहीं भी हमारे अंदर मैं और मेरा ना आए। जितना हम इस पर अभ्यास करते चलेंगे, सूक्ष्मता आती जाएगी, हमें पता चलता जाएगा कहां सूक्ष्म मैंपन है। जीवन में रहते हुए, परिवारों में रहते हुए, अगर मैं और मेरा रहता है तो मैं अभिमान को जन्म देता है, मैं जीवन की दिव्यता और अलौकिकता को समाप्त कर देता है, और मेरा मोह को बढ़ाता है, आसक्तियों में वृद्धि करता है। दोनों ही हमें छोड़ने हैं। मैंपन से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, टेंशन रहती है, मैंने किया, मैंने ये किया, मेरा नाम हो, पुण्य कम होने लगते हैं। जैसे मैं एक जगह अभी भट्टी में था तो क्वेश्चन आंसर था, एक ने प्रश्न की चिटकी दी कि हम यज्ञ में सेंटर में पैसा देते हैं, बहने ठीक ठीक यूज नहीं करती, क्या करें, यहां दें या न दें, सीधा पूछा। मेरा उत्तर तो इतना ही था कि देने से पहले ही आपको संकल्प है मेरा पैसा ठीक से यूज हो। संकल्प तो सुंदर है लेकिन मेरापन आ गया तो वहीं से भाग्य का कटना प्रारंभ हो गया। फिर पैसा देकर रोज देखते भी रहेंगे कहां यूज हुआ, तो दिनों दिन प्रारब्ध कटती जाएगी। इसलिए जो दे दिया उससे अपना अधिकार समाप्त हुआ, विकार दे दिए, अब उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं। जीवन समर्पित कर दिया, जीवन पर अब हमारा अधिकार नहीं, उसका है जिसको दिया है। तन अर्पित कर दिया, तन पर बाबा का अधिकार। मन दे दिया, मन पर बाबा का अधिकार। बुद्धि अर्पित कर दी, अब मेरी बुद्धि है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये अधिकार समाप्त। इतनी सूक्ष्म प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, जरा आगे बढ़ो। जिन्होंने बाप का शुरू से साथ निभाया है उनका इस संसार में बहुत महत्व हो जाएगा। जय जयकार में बाबा के साथ वो आत्माएं भी खड़ी होंगी तो हम सभी। लेकिन बाबा ने इसमें एक बड़ी गुह्य बात और कही है कि बाबा का गुणगान करते करते नोट की किसी ने अपना भी गुणगान करने लगते हैं, इसलिए लोग गुणगान नहीं करते, भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। गुणगान को समझ लें सभी, गुणगान का ये अर्थ नहीं कि हम बाबा की महिमा कर रहे हैं केवल, तो ज्ञान का सागर है, सुखदाता है, प्यार का सागर है, ये है वो है, ये तो भक्त भी करते हैं। हम बाबा का गुणगान कर रहे हैं, मान लो हमने कोई अच्छी सेवा की, बहुत सफलता मिली, तो हम बाबा का गुणगान करेंगे, वाह बाबा तुमने कमाल कर दिया, कितनी अच्छी सफलता दिलाई, कितनी आत्माओं को जगा दिया। लेकिन साथ में अगर ये भी करते हैं, मैंने भी तो बहुत कुछ किया, तुमने थोड़ा ही किया, तो ये मैंपन तो सफलता में एक बाधा पैदा कर देता है। और आत्माएं जो बाबा का से जुड़नी चाहिए वो दूर होने लगती हैं। तो बड़ी सूक्ष्म बात थी, मैं भी अपने को चेक करता हूँ, कई बार ये बात सुनी है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, जब हमें मान मिलता है, जब हमें सफलता मिलती है, जब हम अपनी किसी योग्यता का विकास देखते हैं, तो हम बाबा बाबा करते हैं, तुमने दिया तुमने कराया, या मैंने भी कुछ किया, ये भी सूक्ष्म संकल्प रहता है। मुझे घटना याद आ गई, आप सबको याद आ जाएगी, 3-4 साल पहले अव्यक्त बाबा ने मुरली चलाते हुए बीच में ही एक बहुत सुंदर सीन का वर्णन किया कि आज वतन में दादी प्रकाशमणि और ये मतलब गुलजार दादी दोनों को इमर्ज किया और कहा, बाबा ने दोनों की महिमा की। दादी को कहा, दादी प्रकाशमणि, कि आपने यज्ञ को 40 साल कितनी कुशलता से संभाला है। गुलजार दादी की महिमा की, आपने बाबा को किस तरह अपने अंदर समाया है इतने साल। तो दोनों कहने लगी, ना बाबा सब कुछ आपने किया है, हमने नहीं, आपने किया है, आपने किया है। बाबा ये सुना रहे थे। क्यों सुनाता है बाबा हमें ये? सिखाने के लिए कि जैसे दो ये महान आत्माएं मैंपन से पूरी तरह मुक्त हैं, तुम भी हो जाओ। तो ब्रह्मा बाबा का भी आधार नंबर वन में जाने का यही, अश्वत्नों का भी आधार यही। तो हम बहुत अच्छी तरह अपने को ट्रेंड कर दें, हमारे पास जो कुछ है, हमें जो कुछ मिलता है, वो सब प्रभु देन है। बहुत ये सुंदर फीलिंग है, फीलिंग हो कहने तक न हो। अगर मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, प्रभु देन। अगर मुझे कार्यों में बहुत सफलता मिल रही है, प्रभु वरदान। यदि हम पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाबा की मदद। बिना उसकी मदद के कोई श्रेष्ठ पुरुषार्थी भी बन नहीं सकता, ये अनुभव हो जाना चाहिए। तो बाबा की मदद के निरंतर अनुभव हमें ये एहसास कराने लगे कि हमारे साथ बाबा है, उसकी मदद से, उसकी शक्तियों से, उसके वरदानों से, उसकी दृष्टि से ही हम कुछ कर रहे हैं। यदि उसकी छाया हमसे हट जाए, यदि वो अपना हाथ हमारे सिर से हटा ले, तो हमें पता चलेगा वी आर नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं है, बोलने की भी ताकत नहीं है। मैं तो सब ये बहुत अच्छी तरह अनुभव करता हूँ। मान लो मैं बोलता हूँ, मुझे आभास होता है मेरे साथ बाबा की शक्तियाँ काम करती हैं। मैं सोच लूँ कि नहीं मैं कर रहा हूँ, तुरंत डिस्टर्बेंस फील हो जाएगा इधर के, नो, भारी हो जाएगा सिर, नहीं बाबा कर रहा है। तो बहुत अच्छी इस धारणा को अपनाएं। इसका विस्तार बहुत बड़ा है, इस पर लंबी चौड़ी कई घंटे की क्लासेज हो सकती हैं। लिस्ट बनानी चाहिए, मैंपन किस किस रूप में आता है, मेरापन का क्या क्या स्वरूप है, उन्हें कैसे हटाएं। ज्यादा नहीं, मैं आप सभी को कहूंगा, कन्याएं भी सामने बैठी हैं, 10-10 बातें लिख लो। इस तरह के 10 मैंपन आते हैं, इस तरह के 10 मेरेपन हैं। जैसे मैं दोनों के लिए बात करूंगा, गृहस्थ वालों के लिए भी। मैं घर का मालिक हूँ, मैं ही कमाने वाला हूँ, मैं न कमाता तो तुम कुछ न कर पाते, मैंने ही ये सब कुछ घर बार तैयार किया है, मैंने पूरा जीवन बहुत मेहनत करके तुम सबको स्टैंड किया है। चार बच्चे हैं तो उन्हें कहेंगे तुम्हारे लिए मैंने जीवन घिसा दिया है, मैंने नींद भी नहीं देखी, भोजन भी नहीं देखा, तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है। ये मैंपन आत्मा को थका देता है। और यदि वही बाप सोचे, मैंने तो केवल कर्तव्य पूरे किए हैं, एक बाप का फर्ज है वो बच्चों को अच्छी पोजीशन पर ले जाए, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे बाबा कहते थे ना, बाप तो सेवक होता है बच्चों का, ब्रह्मा बाबा भी कहते थे, शिव बाबा भी कहते थे। तो मैंपन इस तरह ना आए। माताओं में भी मैंपन आता है या नहीं? मैं घर की बड़ी हूँ, मैं न होती तो घर ही न चलता, मैं होम मिनिस्टर हूँ, आता है माताओं को? अनेक तरह के मैं आते हैं, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मेरे पास बहुत सत्ता है या शक्ति है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मुझे लंबा अनुभव है। ज्ञान का भी मैंपन, मैं 30 साल से ज्ञान में हूँ, तुम तो कल आए हो छोकरे, तुम्हें क्या पता, मैंने बहुत दिवाली देखी है, मैंने बड़े अनुभव किए हैं, जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं, ये सब मैंपन। लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है। मैंने केवल उदाहरण दिया ताकि आपका चिंतन अब काम करे। पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत होशियार हूँ, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मैं बहुत कमाती हूँ, मेरा घर में बहुत योगदान है, मैं घर में बड़ी हूँ, सबको मेरी बात माननी चाहिए, होता है नहीं? सेंटरों में भी होगा यही, तो सभी चेक करेंगे और मैंपन को हटाया जाएगा। एक बात तो जो मैंने आपको याद दिलाई, बाबा ने कई बार वो सुनाई है, सब कुछ प्रभु देन है। फील करें इसे, केवल रिपीट नहीं करेंगे। अगर माताओं के पास अच्छा परिवार है तो बाबा की देन है, अगर परिवार में अच्छा पैसा है तो प्रभु प्रसाद है, अगर परिवार में सुख शांति है तो बाबा हम पे प्रसन्न है। ऐसे संकल्प करेंगे, बाबा को थैंक्स देते रहेंगे, तुमने हमें ये 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 दिया, बहुत सुख मिलेगा, ये अपने में योग हो जाएगा और हम बाबा के समीप चलते चलेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट विधि है, मैं कौन हूं, स्वमान। जितना हमारा स्वमान ऊंचा उठेगा, मैंपन का अभिमान उतना ही डाउन होगा। इसलिए अपने स्वमान को बढ़ाते चलें, मैं कौन, तो दूसरी फीलिंग होने लगेगी, हमारी हर चीज बढ़ जाएगी और साथ में बाबा भी हमें बहुत आकर्षित करेगा। तो स्वमान पे ध्यान दें, मैं एक महान आत्मा हूँ, बाबा की छत्र छाया में पलने वाली आत्मा हूँ, राज ऋषि हूँ, इस धरा की ब्यूटी हूँ, जान का नूर हूँ, बाबा का दिल तत्त नसीन हूँ। इसमें रहते रहते पहले मोटा अभिमान समाप्त होगा। मोटा अभिमान, गीता में भी तीन शब्द आए हैं, अभिमान, घमंड और अहंकार, तीन शब्द गीता में हैं कि योगी इन तीनों से मुक्त हो जाता है। घमंड थोड़ा बाहरी रूप है, ये व्यक्ति बड़ा घमंडी है, कुछ भी है तो ज्यादा घमंड है। अभिमान थोड़ा बीच का, इसको अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान है, इसको अपने धन का बड़ा अभिमान है, इसको अपनी पोजीशन का बड़ा अभिमान है। और अहम, ये योगियों के लिए सूक्ष्म चीज, मैंपन भी नहीं। अहम, मैं, कार, देह, मैं ये कार हूं ही नहीं। जो इससे मुक्त होता चले वो अहंकार से मुक्त। तो स्वमान को बढ़ाते चलें, मैंपन को घटाते चलें। माताएं सुन रही हैं ध्यान से, मैंपन ही समस्याओं का पहला बीज है। देखो, मैंपन से अभिमान बढ़ेगा, अभिमान से क्रोध बढ़ेगा, क्रोध से अनेक समस्याएं पैदा होंगी। दूसरी चीज, मेरापन। पहले मोटे मेरेपन को हम छोड़ते चलें, फिर सूक्ष्म, और जिसको इस मैंपन मेरेपन से पूरा मुक्त होना हो, वो ज्यादा अभ्यास करे। जो इसी मुरली में है, ये देह भी बाबा की अमानत है, मैं तो आत्मा इस देह में आ गई हूं, जैसे बाबा ने मेरे लिए देह तैयार रखा और आदेश दिया, जाओ बच्चे, वो तुम्हारा देह, उसमें प्रवेश करके अपना पार्ट बजाओ। तो देह से जितना अनासक्त होते जाएंगे, उतना ही मेरेपन से भी मुक्त होते जाएंगे। पहली शुरुआत करेंगे मेरा परिवार, मेरा परिवार नहीं। सुंदर सुंदर संकल्प करेंगे, है तो आपका ही, वैसा नहीं कि आपसे कोई छीन लेगा, लेकिन ये परिवार मेरा नहीं बाबा का है। मेरा घर, मेरा यज्ञ, मेरे मेरा घर नहीं बाबा का यज्ञ है। मेरा घर, मेरा परिवार, इस मेरेपन से धीरे धीरे डिटैच होंगे। ये मेरा घर नहीं बाबा का यज्ञ है, ये मेरा परिवार नहीं, ये सब देव कुल की महान आत्माएं मेरे परिवार में आई हैं। ऐसी फीलिंग रखेंगे, आत्मिक दृष्टि रहेगी तो आत्माओं के साथ ये संकल्प नहीं होता है मेरी आत्माएं हैं, ये तो सब बाबा की आत्माएं हैं। बहुत अच्छी फीलिंग सब बढ़ाएंगे। ये घर बाबा का यज्ञ है, यहीं से कर दो सभी भाई बहने, अपने घर को देखो और संकल्प कर दो, ये घर मेरा नहीं बाबा का यज्ञ है। कितनी अच्छी फीलिंग होंगी, हम बाबा के यज्ञ में रहते हैं, तो माताओं को ये संकल्प की जरूरत नहीं हम यज्ञ में चल के रहें, हम तो गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ में नहीं आप यज्ञ में रहेंगे। और बाबा के महावाक्य हैं, जो अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। तीसरी बात इससे भी सुंदर है, उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं, मैं बनाते ही भंडारे खाली होने लगते हैं। बाबा का यज्ञ है ये फीलिंग आते ही भंडारे और भंडारी भरपूर होने लगते हैं। ये सूक्ष्म गति बाबा ने सिखाई है, स्वीकार है ना सबको, चाहे कोई समर्पित भाई बहने यहाँ बैठे हैं, चाहे अपने लौकिक संसार में रहने वाले हैं, सबके लिए इक्वली यही सिद्धांत है, मेरा नहीं बाबा का। क्योंकि हमें ये सब कुछ छोड़कर जाना होगा, अगर हम यहाँ की चीजों को पकड़े बैठे होंगे बुद्धि से मन से, तो हमें ये देह छोड़ने में बड़ा कष्ट होगा। हम बाबा के साथ एक सेकंड में नहीं जा सकेंगे, इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर रहस्य बताया है, अष्ट रत्नों की स्थिति होगी सेकंड में अशरीरी। देह छोड़ेंगे स्वेच्छा से, संकल्प करेंगे मैं आत्मा बाबा आपके पास आ रही हूँ, और बस देह छोड़कर चल देंगे। ये बाबा ने सर्वश्रेष्ठ स्थिति बताई है, अचानक शरीर नहीं छूटेगा, शरीर गिरेगा भी नहीं, स्मृति स्वरूप होकर ऐसी आत्मा देह का त्याग करेगी। एक पक्की स्मृति से बाबा मैं आपके पास आ रही हूँ, तो बाबा भी वेलकम करेगा, आओ बच्चे, तीना भी मुरली में बाबा तुम्हारा वेलकम करता है घर में, तुम्हें रिसीव करता है। तो ऐसा फील होगा जैसे वो सूक्ष्म लोक में बाप दादा हाथ बढ़ाए फैलाए खड़े हैं, आओ बच्चे मोस्ट वेलकम, चलो अपने घर चलें। तो मेरापन हमें बांधता है, जो आत्माएं बंधनों में बंधी हुई हैं, जिनको जीवन में खुशी नहीं रहती, जो हल्के नहीं रहते, जो चिंताओं में डूबे रहते हैं, जो फिक्रों में परेशान रहते हैं, समझ लें मेरापन है। मेरापन ही आत्मा को बांध रहा है, नहीं तो सोचो। भगवान ने वचन दे दिया है, मैं बैठा हूं, तुम चिंता न करो। फिर भी हम चिंता करते हैं कि तुम बैठे रहो, हम तो चिंता करेंगे। अर्थात बाबा की शक्तियों में विश्वास नहीं है। तो मेरेपन से मुक्त हो मेरे बच्चे। देखो क्या होता है माता पिताओं को, मुझे बच्चों की शादी करनी है, पैसा नहीं है, मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं, मैं अपने बच्चों को कैसे सेट करूं, इनका भविष्य कैसे अच्छा हो, इनका भाग्य तो अच्छा नजर नहीं आता। ये माँ बाप को चिंताएं रहती हैं, और ये चिंताएं तब हैं, कौन सा शब्द है वहां, मेरे बच्चे। और जरा छोड़ के देखो इस संकल्प को, मुझे कितने भाई अनुभव सुनाते हैं, गरीब लड़की की शादी करानी थी, हमारे पास केवल 10,000 था, हमने बाबा को कहा बाबा 10,000 है, 10,000 में तो आजकल कुछ भी नहीं होता, अब तुम जिम्मेदार है, जो चाहे करो। और सुनाया पता नहीं कहां कहां से पैसा आता रहा, आराम से कार्य पूरा हो गया। सेंट्रो के मकान बनने थे, बहनों ने बाबा को अर्पित कर दिया, हमारे पास तो इतना ही है, 10 लाख इकट्ठा हुआ है, बजट तो 50 लाख का है, पता नहीं कहां कहां से इकट्ठा हो गया, किस किस ने आकर दिया, सेंटर का मकान बन गया। मेरापन मनुष्य को भारी करता है, चिंताओं में जलाता है। हम सब कुछ तेरा, ये समर्पण भाव जरा बढ़ाते चलें। बहुत सूक्ष्म चीज है, सभी भाई बहनों को इस पे ध्यान देना है। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ कहने के लिए नहीं, भक्तों की तरह नहीं, भक्ति में तो ये गीत प्रसिद्ध है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मंदिर में जाके ये, और घर वापिस आके तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा, मेरा मेरे पास क्या लागे तेरा, हो जाता है या नहीं दुनिया में ऐसा ही। हमारी स्थिति ये ना हो जाए, सब कुछ तेरा, मेरी इच्छाएं भी तेरी, मेरे सब संकल्प तुम्हारे, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए, मेरी हर चीज तुमको अर्पित। बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे सभी, कर्म किया, सेवा की, मान लो मान सम्मान मिला, बहुत सफलता मिली, बहुत अच्छा अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा अच्छा, खराब नहीं, सब बाबा को अर्पित कर दो, ये सब तुमको अर्पण। तो इतनी दिव्यता रहेगी जीवन में, कभी किसी तरह की टेंशन नहीं होगी, चिंताओं से मुक्ति रहेगी। और यही बात हमें आने वाले विनाश काल में बहुत सहायक सिद्ध होगी। जिसके पास मेरा मेरा होगा, देखो दोनों बातों पे ध्यान दें, जिसके पास मैं बहुत होगा, विनाश काल में वो अपने को खाली अकेला पाएंगे। जब भयंकर परिस्थितियां आएंगी, उन्हें लगेगा हम तो अकेले हैं। और जिन्होंने मेरे को त्याग कर दिया, मैं को त्याग कर दिया, मेरी जगह, तो उसे लगेगा बाबा सदा साथ दे रहा है, छत्र छाया बनकर हमारे साथ चल रहा है। विनाश काल में भी ऐसी आत्माएं निर्भय होकर चारों ओर विचरण करेंगी, सबको लाइट हाउस बनकर लाइट देते हुए। और जिनमें मैपन होगा, वो भयभीत भी होंगी उस टाइम, अकेलापन महसूस होने लगेगा, खालीपन आने लगेगा। मेरा मेरा, सोच लो सब कुछ जाएगा, हम चाहें या न चाहें। भगवान उवाच, जो तुम इन आंखों से देखते हो वो नहीं रहेगा। सब कुछ तो आंखों से दिख रहा है, इसलिए जिनके पास मेरापन बहुत होगा वो दुखी बहुत होंगे। हाय मेरा ये सब चला गया, बाबा ने मदद नहीं की। बाबा मदद कर रहा होगा ले जाने में भी, सोचो कैसे, थोड़ा सा ले जाकर पथा धन संपदा देगा। इसलिए जिन्होंने पहले से सब कुछ प्रभु अर्पित कर दिया उनका कुछ भी नष्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं उनका मकान टूटेगा नहीं, लेकिन वो उनका रहा ही नहीं तो उनका कहां से जाएगा। तो बिल्कुल अपने को ऐसा बना दें जिसको बाबा अपने शब्दों में कहता है, बेगर बन जाओ, मेरा कुछ भी नहीं। राजयोग माना, मेरा कुछ भी नहीं। तो सभी चेक करेंगे, मेरेपन की गति बहुत सूक्ष्म है। घड़ी भी हमने पहनी है, क्या रहता है, मेरी घड़ी। मान लो टूट के गिर जाए, अभी चेन टूट जाए तो कितने संकल्प चलते हैं, जबकि हमें पता है कि चेन फिर बन जाएगी। घड़ी खो गई, हमें पता है एक खोई है दूसरी आ जाएगी, फिर भी मनुष्य कितना सोचता है छोटी छोटी चीजों के बारे में भी। तो हम इस मेरेपन को पहचाने, ये मेरा मोह को जन्म दे रहा है और मोह आत्मा को बंधन डाल रहा है। हम माताओं का, भाइयों का, अपने बच्चों से मोह तो होगा। कोई ये कहे मोह न रखो, कहने से तो मोह नहीं हटेगा, लेकिन अगर आप उन्हें आत्मा देखकर ये संकल्प करेंगे ये बाबा के हैं, तो मोह आत्मिक प्यार में बदलता जाएगा। आत्मिक प्यार ही मोह से मुक्ति का सुंदर आधार बन जाएगा। कई लोग सोचते हैं मोह नहीं रखेंगे तो बच्चों की पालना कैसे होगी। नहीं, मोह का स्थान ले लेगा निर्मल प्यार, आत्मिक स्नेह, और ये हमें बंधन मुक्त बनाएगा, घरों में वातावरण को बहुत सूक्ष्म करेगा। सेवा में रहने वालों को मेरा डिपार्टमेंट, मेरी ड्यूटी, मुझे ही ये कार्य मिलना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। दादी जी एक बार कहीं सेवा टूर पर गई किसी सेंटर पे, न मुझे नाम का पता है न बताने की जरूरत है, पब्लिक प्रोग्राम था। एक भाई ने संघर्ष कर दिया, स्टेज सेक्रेटरी मैं ही बनूंगा। दादी वहां है, उसमें इतना अहंकार और क्रोध आ गया कि
ॐ शांति
शांति
ॐ शांति
शांति।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
सवेरा
अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा।
एक भाई ने संघर्ष कर दिया, स्टेट सेक्रेटरी मैं ही बनूंगा। दादी वहां है, उसमें इतना अहंकार और क्रोध आ गया कि उसने कहा यदि मुझे स्टेट सेक्रेटरी नहीं बनाओगे तो मैं प्रोग्राम नहीं होने दूंगा। आखिर दादी को बड़ी मेहनत करनी पड़ी उसे समझाने के लिए, उसे दूसरा रोल दिया गया, तब वो कहीं जाकर शांत हुआ। तो सोचो क्या ऐसी आत्माओं का भाग्य बनता है? बिल्कुल नहीं। जो सेवाओं में अपने स्वार्थ के कारण विघन रूप बन जाएं, उनके पिछले पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। हमें ये बहुत ध्यान देना है, ये भगवान का यज्ञ है, ये उसका महान कार्य है। वो संसार बदल रहा है, वातावरण को बदलने आया है, प्रकृति को बदलने आया है, संसार में पवित्र प्रेम का साम्राज्य स्थापित करने आया है। मैं और मेरेपन के कारण हम उसके कार्य में बाधा नहीं डालेंगे, नहीं तो पुण्य नहीं बनते, नाम भी नहीं होता बल्कि नाम बदनाम होता है, और बाबा की नजरों से भी ऐसी आत्माएं दूर चली जाती हैं। तो ये था आज का बहुत सुंदर कल की मुरली का चिंतन। बहुत पॉइंट्स थी, मैं तो सारी नोट की, कुछ लाल पेन से लिखी, अंडरलाइन करके रखी, सवेरे भी आज पढ़ी, कल शाम को पढ़ी, आज शाम को भी पढ़ी। इतना आनंद आता है उन पॉइंट्स को पढ़ने में कि एक एक चीज हमारे दिमाग को खोल देने वाली है। प्योरिटी के लिए बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। जो कार्य, जो सेवा तुम तन मन धन समय की एनर्जी लगाकर करते हो, वो कार्य अकेले प्योरिटी करेगी। इसलिए सेवाओं की सफलता का आधार आत्माओं की प्योरिटी पर है। बहुत गुह्य रहस्य भरा महावाक्य बाबा ने उच्चारण किया, प्रकृति भी सफलता की माला डालेगी। प्रकृति सफलता की माला डालेगी। इस बात को बहुत गहराई से सब समझने का प्रयास करेंगे। प्रकृति हमें सुख देगी, पाप और पापियों का विनाश करेगी और हमारी मदद करेगी, हमें सुरक्षित करेगी, हमारी सफलता पर माया जीत हम बने। बाबा के कार्यों में हमने मदद की, प्रकृति प्रसन्न होकर जैसे गले में माला डालेगी। स्थूल माला की बात नहीं, सूक्ष्म रूप से प्रकृति ऐसी आत्माओं का सम्मान करेगी कि ऐसी आत्माएं कहीं हैं और मूसलाधार बरसात हो रही है तो बंद हो जाएगी, ऐसी आत्माएं कहीं हैं भयानक तूफान चल रहा है शांत हो जाएगा, ये होगा प्रकृति सम्मान देगी, गले में सफलता की माला डालेगी। तो हम इन सूक्ष्म और मोटे मैं और मेरेपन से मुक्त होकर मैं कौन हूं, न केवल ये कि मैं एक महान आत्मा हूं, मैं इसमें और एक शब्द जोड़ देना चाहता हूं, मैं कितना महान हूं। मानता के भी लेवल हैं, मैं पूर्वज हूं। इसी मुरली में एक और गहरी बात कही, तुम अपने स्वरूप को, इस देवी इस देव स्वरूप को ऐसा बनाओ जो जो कुछ मांगे तथास्तु, उसे वही दे सकें। तो बाबा हमें इतना महान बना देना चाहता है, बाबा की दृष्टि में हम इतने ऊंचे हैं, स्वयं भगवान जैसे हमें सम्मान दे रहा है। तुम साधारण नहीं, पहचानो अपने को, तुम कितने महान हो, कितने बड़े बड़े कार्य तुम्हें करने हैं। इसलिए अपने वाइब्रेशंस को बहुत महान बनाना है। ये मैं और मेरापन, जैसे हम अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर लेते हैं कि इनसे बाहर हमारे वाइब्रेशंस नहीं जाएंगे, ये सूक्ष्म बात भी बाबा की मुरलियों में है। मैंपन एक ऐसी दीवार है कि तुम्हारे वाइब्रेशंस को संसार तक नहीं पहुंचने देते, उसकी एक सीमा बन जाती है। तो जितनी ऊंची नजर से बाबा हमें देख रहा है, हम भी अपने को उतनी ही ऊंची नजर से देखें। और सभी टीचर और कन्याएं बैठी हैं, मैं आप सभी को एक बहुत अच्छा चिंतन देता हूं लास्ट में। बाबा मुझे कैसा देखना चाहता है, जरा विचार किया करें और विजन बनाया करें कि बाबा ऊपर से मुझे रोज देखता होगा, अब कैसा देखता है और कैसा वो मुझे देखना चाहता है। भगवान की श्रेष्ठ कामनाओं को हम पूरा करने वाले बन जाएं, उसमें भी उसका अपना कुछ नहीं, वो हमें ही चमका कर, हीरो एक्टर बनाकर, भरपूर करके विश्व की स्टेज पर लाना चाहता है। तो इस मुरली का आप भी अध्ययन करें, मुरली से करें या खुद पॉइंट लिखें और इसको अपना स्वरूप बनाएंगे। ओम शांति।